समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और आज मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो मुकेश, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट मुकेश कुमार। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम गयाना की संसद को संबोधित करेंगे।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कन्फर्ड विद गयानास हाईएस्ट नेशनल अवार्ड द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस इन जॉर्जटाउन। मिस्टर मोदी डेडिकेट्स द ऑनर टू द पीपल ऑफ इंडिया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती पर जयंती समारोह का उद्घाटन किया। उनके सम्मान में विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया।
Defense Minister Rajnath Singh says India always advocated and practiced dialogue for resolving complex international issues.
और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने आईसीसी T20 क्रिकेट खिलाड़ियों की नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा।
Yes, and Indian Panorama, the 55th International Film Festival of India in Goa, 25 feature films and 20 non-feature films to be screened in the section. And now, Mukesh, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about India International Trade Fair and World Fisheries Day. The 43rd India International Trade Fair, IITF, has begun in New Delhi at the Bharat Mandapam Complex. The trade fair offers a platform for various small and medium enterprises, MSMEs, artisans, non-government organizations and self-help groups to showcase their products and services to the public and business community. And this year, trade fair's theme is Viksit Bharat at 2047. The IITF is one of the country's most popular trade shows, attracting business exhibitors and visitors eager to discover new goods, crafts and innovations.
बिल्कुल, मेले के इस विषय का उद्देश्य भारत की विकास संबंधी चीजों को दर्शाता है क्योंकि स्वतंत्रता की एक शताब्दी के करीब पहुंच रहा है। ये विषय कारोबारी और सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक संकेत है जो एक विकसित और आत्मनिर्भर भविष्य के लिए भारत के नजरिए के साथ संरेखित है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार ये ट्रेड फेयर भारत की विविध सांस्कृतिक और व्यापार प्रथाओं को प्रदर्शित करने में सहायक है और ये प्रगति और नवाचार की दिशा में देश की प्रगति को दर्शाता है। 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला अब आम लोगों के लिए खोला गया है। पहले ही दिन 25,000 से अधिक लोगों ने पहुंचकर मेले का आनंद उठाया। 14 नवंबर से शुरू हुए इस मेले को 18 नवंबर में व्यापारिक प्रतिनिधियों के लिए खोला गया था और लेकिन 19 नवंबर से इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। मेले में आए अधिकांश लोगों ने अपने अपने राज्यों के मंडपों में जाकर वहां की विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर और हस्तशिल्प का आनंद लिया। झारखंड और बिहार मंडप में भारी भीड़ दिखाई दी जहां लोग पारंपरिक वस्त्र, हस्तशिल्प और क्षेत्रीय व्यंजनों में विशेष रुचि लेते दिखे। वहीं बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने भारत की विविधता को करीब से देखने का अवसर प्राप्त किया।
यस मुकेश, एंड द इवेंट एम्स टू शोकेस इंडियाज इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ एंड एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, ऑफरिंग पार्टिसिपेंट्स अ चांस टू एंगेज इन मीनिंगफुल एक्सचेंजेस एंड एक्सप्लोर स्ट्रेटजीज फॉर अ प्रॉस्परस एंड रेजिलिएंट इंडिया। एंड द आईआईटीएफ सीक्स टू प्रोवाइड समथिंग फॉर एवरीवन विद अ वाइड वैरायटी ऑफ एग्जिबिट्स फ्रॉम बोथ लोकल इंडियन कंपनीज and foreign participation, and the government wants to make the India Trade Promotion Organization, ITPO, a premier organization that represents India's value chain and industry as a whole.
जी हाँ अभिषेक, भारत मंडपम में इस बार विकसित भारत के अंतर्गत स्वदेशी वस्त्र, हस्तशिल्प, जैविक उत्पादों और पारंपरिक वस्तुओं को विशेष महत्व दिया गया है। लोग मिट्टी के बर्तन, खादी वस्त्र, हर्बल उत्पाद और स्थानीय कलाकृतियों की खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा झारखंड मंडप में जनजातीय कला, बिहार मंडप में मधुबनी पेंटिंग और अन्य राज्यों के क्षेत्रीय उत्पादों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। मेले में विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियां भी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। देश विदेश से आए पर्यटक और स्थानीय लोग भारत की संस्कृति और विविधता की सराहना कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 27 नवंबर तक जारी रहेगा। इसमें विभिन्न देशों के उत्पाद भी प्रदर्शित किए जाएंगे। आयोजकों को जो है वो आशा है कि आने वाले दिनों में लोगों की संख्या में और भी वृद्धि होगी।
एंड लेट मी ऑल्सो टेल आवर लिसनर्स मुकेश दैट टिकट्स आर अवेलेबल एट 55 डीएमआरसी मेट्रो स्टेशंस एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, द भारत मंडपम मोबाइल ऐप, डीएमआरसी ऐप मोमेंटम 2.0, Delhi Sarthi, the official ITPO website, and the DMRC website, www.itpo.autope.in. And notably also, ITPO also allows the public to book tickets for an 8-seater golf cart with a driver for transportation on the Bharat Mandapam grounds. And these carts will run in 2 time slots, 10 a.m. to 2 p.m. and 3 p.m. to 7 p.m. each, lasting for 4 hours. And now moving on to a second topic of the day, that is the World Fisheries Day. World Fisheries Day is celebrated every 21st November, that is today, and represents a chance to recognize the vast and sometimes underappreciated food source for millions of humans, that is the sea. It's also an opportunity to look back over the last 12 months and assess how well fishing efforts have performed in achieving goals of sustainability as well as setting out plans for the coming year.
जी हाँ, विश्व मत्स्य पालन दिवस लाखों लोगों के लिए समुद्र के विशाल खाद्य स्रोत को पहचानने का अवसर प्रदर्शित करता है। ये पिछले 12 महीनों को देखने और ये आकलन करने का भी अवसर है कि स्थिरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मछली पकड़ने के प्रयासों ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है, साथ ही आने वाले वर्ष के लिए योजनाएं भी निर्धारित की हैं।
Yes, and Mukesh, every year on this day, global events are organized to underscore the critical importance of sustainable fisheries and the need to protect aquatic ecosystems and the livelihoods of fishing communities. This year's World Fisheries Day theme is India's Blue Transformation, Strengthening Small-Scale and Sustainable Fisheries. And on this occasion, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Minister Rajiv Ranjan Singh said that India's inland fishing has a larger share than marine fishing in fish production, which is remarkable. We have more from a correspondent.
India has around 8% share in global fish production, making it the second largest fish producing country and the largest inland capture fish and shrimp producer. During the last 10 years, the center has taken a number of initiatives for the holistic development of the fisheries and aquaculture sector in the country, stepping up investment to more than 38,000 crore through various schemes and programs. Mr. Singh today launched the 5th Marine Fisheries Census that will facilitate data census for promoting data-driven policy making. The Fisheries Minister also launched the National Action Plan on Sharks, which aims to adopt sustainable and effective management of the shark populations. A new single window system was also launched as well for online application and registration of coastal aquaculture farms by the Coastal Aquaculture Authority. Aman Yadav for Parikrama, New Delhi.
Yes, and the event hosted at the Sushma Swaraj Bhavan in New Delhi will witness the presence of Union Minister Rajiv Ranjan Singh alongside other prominent leaders, including George Kurian, Professor S.P. Singh Baghel, and Manuel Barange from the FAO. Joining them will be a diverse group of participants, from ambassadors and international delegates to fisheries scientists, researchers, and industry leaders, underscoring the event's global significance.
और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या कुछ खास है।
चलती फिरती हंसती बोलती नाचती गाती तस्वीरें,
दुनिया के सब रंग दिखाती रूप दिखाती तस्वीरें,
रहती है करोड़ों के दिल में भारत के सिनेमा।
The 55th edition of IFFI celebrating the diversity of cinema with a perfect blend of international collaborations, regional flavors and technological advancements. IFFI's global outreach continues to grow stronger. Echo, an IFFI invitee from Indonesia, expressed delight at the festival's impeccable management. Akashwani spoke to Echo to know what attracted him to the International Film Festival of India. Soundbite of Echo.
The IFFI is it's a very well-organized event. Last night's opening was also very, very good. Good luck to the organizers.
S. Nallamuthu, chairman of the non-feature film jury for Indian Panorama, spoke about the selection criteria, highlighting the emphasis on storytelling and content. He also credited advancements in technology and evolving audience interests for the growth of Indian filmmaking. Soundbite of S. Nallamuthu.
There are a lot of entries, more than 250 entries. Our criteria mainly was good content, good storytelling. So that was our main thing. We all from film background, all film institute people, a lot of experienced filmmakers from different all over India. So our whole idea is to give importance to a variety of subjects and good content.
Adding to what chairman of the non-feature film jury for Indian Panorama said, a jury member, Vandana Kohli, emphasized the opportunities IFFI provides for young talent. Soundbite, Vandana Kohli.
Every film festival is an opportunity for talent to showcase its work. And IFFI, which is in its 55th edition now, has been around, has been doing exactly that. It provides a stage, an opportunity for young talent to be discovered, for student films to be selected, for then young people to come and intermingle with people from the industry and create those linkages, which are so important for mentoring, to find resources and other teams that they can work with. So I think the International Film Festival of India in that sense is absolutely indispensable on the Indian film scene.
Filmmaking and the challenge of judging a form of art, and that to cinema, is a Herculean task in itself. Rajni Acharya, another jury member, had a similar experience when she had to shortlist movies for the premiere. Talking to Akashwani, she shared the challenges faced during the selection process and reflected on how the cinematic landscape has evolved. Over the years, IFFI also evolved into the most sought-after film festival of the world. IFFI is not just for established filmmakers, it's also a hub for aspiring talents. This year, there's also a special focus on inclusivity, featuring movies of young and women filmmakers. Sarthak, a young...
Yes, and moving on, Prasar Bharati Chairman Navneet Kumar Sehgal today said that the idea behind launching a new OTT platform is not just to bring healthy content to the digital space, but also to provide content for all sections of society, including children and youth. Addressing the media day after the launch of the national broadcaster, Prasar Bharati's OTT platform Waves, Mr. Sehgal informed that the platform will feature all archival materials of Doordarshan programs that people have grown up watching. He also mentioned the regional cultural programs focusing on heritage have been included on the platform.
To bring a platform where we could bring clean, healthy family entertainment on a platform which is accessible to all. Simultaneously, the endeavor was not only to bring a clean and healthy family entertainment on a digital platform, which is accessible to everybody. Also, bring news platforms, like we have new channels on that OTT platform, almost more than 40, all the prominent news channels on that digital platform. Something for kids, games platforms on that ROTT. Something for youth, current affairs program. Something for all sections of the society.
और अभिषेक, महाराष्ट्र में कल विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। पूरे राज्य में 65% से अधिक मतदान हुआ। इस मतदान में कुछ रोचक बातें भी सामने आई हैं। तो क्या कुछ रोचक बातें हैं, आइए जानते हैं नागपुर से हमारी संवाददाता हिमांगी कुलकर्णी से।
कल 20 नवंबर को सुबह 7 से 6 बजे तक हुए मतदान में मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे बड़े शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं का काफी उत्साह दिखाई दिया। जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध की गई थी, जिसमें महिलाओं द्वारा संचालित पोलिंग बूथ, ट्रांसजेंडर मतदाताओं के लिए रेनबो थीम वाला बूथ और कई जगहों पर इको ग्रीन आदिवासी संस्कृति दिखाने वाले बूथ भी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए स्थापित किए गए। गढ़चिरौली जिला, जो एक नक्सल प्रभावित निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ पर राज्य में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा यानी 73% से ज्यादा मतदान हुआ। गढ़चिरौली में एक दादी फूलमती विनोद सरकार, जिनकी उम्र 111 वर्ष है, यह दादी चल नहीं पाती थी, इसलिए जिला प्रशासन ने चार पहिया वाहन और व्हील चेयर की व्यवस्था की और इस बुजुर्ग महिला ने गृह मतदान सुविधा का लाभ न उठाते हुए खुद मतदान केंद्र पर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान से मुंह मोड़ने वाले युवाओं के लिए 111 साल की दादी का उत्साह अनुकरणीय साबित हुआ और गढ़चिरौली जैसे दुर्गम और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शहरी इलाकों से ज्यादा मतदान दर्ज हुआ। उनके इस जज्बे को देखते हुए नए मतदारों में भी मतदान करने का एक उत्साह पैदा हुआ। मतदाताओं ने मतदान जैसी लोकशाही के उत्सव को मनाने हेतु मतदान प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है। आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
And now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
21st of November is the birth anniversary of the great freedom fighter, revolutionary and poet Kesari Singh Barhat. He was born on November the 21st, 1872 in Shahpura, Rajasthan. Kesari wrote extensively on the theme of nationalism and independence. From 1891, Kesari Singh started working in the service of Maharana of Mewar along with his father, Krishna Singh Barhat.
Due to increasing political interference of the British in the administration, Kesari Singh left the service in 1893. He believed that by organizing common soldiers, Rajputs, Charans and other martial races of Rajputana to take up arms, Rajputana would become free from the British rule and this way revolution would spread to the rest of India.
He came into contact with revolutionaries like Ras Bihari Bose and Sachindranath Sanyal. Kesari Singh became a part of the Revolutionary Party. In 1910, Kesari Singh established Veer Bharat Sabha. He got involved in this work at the beginning of the World War I to prepare for the armed revolution. He sent a parcel of cartridges to the revolutionaries of Banaras and contacted the soldiers of princely states and the British Army.
Kesari Singh was arrested by the British government in Shahpura on 21st of March 1914 and was sent to Hazaribagh Central Jail in Bihar. After his release in April 1920, Kesari Singh went to Wardha, where he started a weekly newspaper, Rajasthan Kesari. In 1919, Thakur Kesari Singh Barhat met Gandhiji and on his advice established Rajasthan Seva Sangh at Wardha. Next year, it was shifted to Ajmer. Thakur Kesari Singh Barhat breathed his last on August the 14th, 1941.
21st of November is also the death anniversary of the revolutionary freedom fighter, journalist and legislator Deshbandhu Gupta. Born as Ratiram Gupta in 1901 in Panipat, he was given the title Deshbandhu by Swami Shraddhanand and Mahatma Gandhi. He was a member of the Arya Samaj.
During his teenage years, he would often take to the streets during protests. After joining the Indian National Congress, he grew closer to the top brass of the party, including Lala Lajpat Rai and Mahatma Gandhi. Lala Lajpat Rai assigned him the task of organizing Congress committees in Karnal. Gupta was a member of the Constituent Assembly. He was a staunch defender of the free press and an advocate for assembly status of the national capital of Delhi.
He started the Rozana Tej newspaper with Swami Shraddhanand. Together with veteran journalist Ramnath Goenka, they bought the Indian News Chronicle in Chennai. Gupta passed away on 21st of November 1951. After his death, Ramnath Goenka renamed the newspaper as the Indian Express.
It was also on 21st November in the year 1909, freedom fighter Anant Lakshman Kanhere shot dead the British officer and collector of Nashik, A.M.T. Jackson, who was suspected to be spying on the activities of Abhinav Bharat Society. Anant Kanhere belonged to Abhinav Bharat Society. People in Nashik arranged a farewell for Jackson at Vijayanand Theatre and staged a drama in his honour.
After Jackson had arrived to see the play, Anant Lakshman Kanhere jumped in front of him and fired four bullets at him. Jackson died immediately. Anant Kanhere decided to commit suicide by taking poison to avoid capture. However, he couldn't kill himself as he was captured by the police. This sensational killing is known as Nashik conspiracy case. 27 members of the Abhinav Bharat Society were convicted and punished. Anant Kanhere was prosecuted by the Bombay High Court and hanged in the Thane prison on 19th of April 1910.
आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम परिक्रमा मुकेश कुमार और अभिषेक मुखोपाध्याय के साथ। और अब कार्यक्रम में वक्त हुआ है व्यापार जगत की हलचल का।
Domestic benchmark equity indices today ended with losses amid sell-off in specific stocks, persistent foreign fund outflows and weak global cues. The 30-share BSE Sensex dipped 122 points or 0.54% to close at 77,156, while the NSE Nifty 50 fell 169 points or 0.72% to settle at 23,350. In the global crude market, Brent crude was trading over 1.3%, up at $73.77 per barrel, and WTI crude gained over 1.4% to trade at $69.74 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading up at 76,910 rupees for 10 grams. Silver 999 fine is also trading up at 90,680 per kilogram when reports last came in. And now for all the news from the exciting world of sports with Mukesh.
जी हाँ, आईसीसी पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में भारत के हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर श्रेणी में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। भारत के तिलक वर्मा बल्लेबाजों की श्रेणी में तीसरे स्थान और सूर्य कुमार यादव चौथे स्थान पर हैं। यशस्वी जायसवाल एक स्थान नीचे खिसक कर आठवें स्थान पर आ गए हैं। रुक करें बैडमिंटन का, तो बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की अनुपमा उपाध्याय आज महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की नात्सुकी निदायरा से 21-7 21-14 से हार गईं। पीवी सिंधु का मुकाबला आज सिंगापुर की योजिया मिन से होगा। चाइना ओपन में और मालिका बंसोड का सामना थाईलैंड की सुपनिडा कटेथोंग से होगा। भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के रास्मस गेमके से खेलेंगे। पुरुष डबल्स में आज चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी का सामना डेनमार्क के रास्मस किजर और फ्रेडरिक सोगार्ड से होगा। महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का मुकाबला लियू शेंगशू और टेन निंग की जोड़ी से होगा।
Yes, and now we have reached that section of a program wherein we remember all those greats who are associated with today's date. And we start off, Mukesh, with Sri Chandrasekhar Venkata Raman or C.V. Raman.
बिल्कुल, चंद्रशेखर वेंकटरमन पहली व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक संसार में भारत को प्रसिद्धि दिलाई। प्राचीन भारत में विज्ञान की उपलब्धियां तो थीं, जैसे शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज, पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के बारे में और आयुर्वेद के फॉर्मूले भी थे, लेकिन पूर्ण रूप से विज्ञान के प्रयोगात्मक कोण में कोई विशिष्ट प्रगति नहीं हुई थी। रामन ने उस खोए रास्ते की खोज की और नियमों का प्रतिपादन किया जिनसे स्वतंत्र भारत के विकास और प्रगति का रास्ता खुला। रामन ने स्वाधीन भारत में विज्ञान के अध्ययन और शोध को जो प्रोत्साहन दिया उसका अनुमान कर पाना कठिन है। रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई थी। इस महान खोज की याद में 28 फरवरी का दिन हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में 28 फरवरी का दिन राष्ट्रीय विज्ञान के रूप में जैसे मनाया जाता है, इस दिन वैज्ञानिक लोग भाषणों और विज्ञान तथा तकनीक की उन्नति और विकास तथा उसकी उपलब्धियों के बारे में सामान्य लोगों और बच्चों को बताते हैं। इन्हीं विषयों पर फिल्में और टीवी फीचर भी दिखाए जाते हैं। इस समय विज्ञान और तकनीक पर प्रदर्शनियां लगती हैं और समारोह होते हैं जिसमें विज्ञान और तकनीक में योगदान के लिए इनाम और पुरस्कार दिए जाते हैं।
ये मुकेश, दिस फिनोमेनन ऑफ हिथरटू अननोन टाइप ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हिच दे कॉल मॉडिफाइड स्कैटरिंग वाज सब्सिक्वेंटली टर्म्ड द रामन इफेक्ट और द रामन स्कैटरिंग एंड रामन रिसीव्ड द 1913 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी एंड वाज द फर्स्ट एशियन एंड द फर्स्ट नॉन वाइट टू रिसीव अ नोबेल प्राइज इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस।
जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और 1928 में सस्ते उपकरणों का प्रयोग करके विज्ञान की मुख्य खोज की गई थी। तब पूरे विश्व को पता चला था कि ब्रिटिश द्वारा शासित और पिछड़ा हुआ भारत भी आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में अपना मौलिक योगदान दे सकता है।
Yes, and Goldie Jean Horn was born on this day in 1945. She's an American actress. She rose to fame on the NBC sketch comedy program Rowan Martin's and Laughing before going on to receive the Academy Award and Golden Globe Award for Best Supporting Actress for a performance in Cactus Flower 1969.
और आज ही पुण्यतिथि है प्रसिद्ध भारतीय पंजाबी गायिका गुरमीत बावा की। उनका पंजाबी लोक गायन में एक रिकॉर्ड है। गुरमीत बावा ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और अपने करियर में प्राप्त किए हैं। वो जुगनी गाने वाले सिंगर्स में से एक थीं और साथ ही वो पहली पंजाबी महिला गायक थी जिन्होंने दूरदर्शन पर गाने गाए थे। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया था। पंजाब के गुरदासपुर जिले के कोठे गांव में सन 1944 में जन्मी गुरमीत बावा पंजाब की लोक गीत जुगनू को गाकर पूरे देश में लोकप्रिय हुई थी और गुरमीत बावा के परिवार में उनके पति कृपाल बावा और दो बेटियां थीं और सन 1991 में पंजाब सरकार ने गुरमीत बावा को केंद्रीय अवार्ड से सम्मानित किया था और इसके अलावा उन्हें पंजाब नाटक अकादमी से संगीत पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार से राष्ट्रीय देवी अहिल्या अवार्ड और पंजाबी लैंग्वेज डिपार्टमेंट से शिरोमणि गायिका अवार्ड से नवाजा गया।
ब्यूर्क वॉज बोर्न ऑन दिस डे 1965। शी इज एन आइसलैंडिक सिंगर, सॉन्ग राइटर, कंपोजर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर एंड एक्ट्रेस, noted for a distinct voice, 3-octave vocal range, and sometimes eccentric public persona. She has developed an eclectic musical style over her career, spanning 4 decades, drawing on electronica, pop, dance, trip-hop, jazz, and avant-garde music. Regarded as the queen of experimental pop, Bjork is one of the most influential pioneers in electronic and experimental music.
बिल्कुल, और आज ही पुण्यतिथि है प्रसिद्ध शिक्षाविद, हिंदी लेखक, साहित्यिक, आलोचक और समाज सुधारक कल्याण मल्लोहा की। उन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किया था। उन्होंने जैन धर्म और जैन समुदाय के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रमुख थे। कल्याण मल्लोहा अपनी ओजपूर्ण वाक्शैली के लिए देशभर में जाने जाते थे। विविध सम्मेलनों में आपने अपना ओजस्वी वक्तव्य देकर हिंदी का मान बढ़ाया था। वो बिरला फाउंडेशन, भारतीय विद्या भवन, भारतीय भाषा परिषद, भारतीय संस्कृति संसद सरीखी देश के सुप्रसिद्ध संस्थानों से जुड़े हुए थे। और अब याद कर लेते हैं उन महान हस्तियों को जिनकी आज जयंती है।
Yes.
जी, और इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक यदुनाथ सिंह को। इन्हें ये सम्मान सन 1948 में मरणोपरांत मिला था। नायक यदुनाथ सिंह का जन्म 21 नवंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के गांव खजूरी में हुआ था। इनके पिता बीरबल सिंह एक किसान थे। यदुनाथ अपने पिता के 8 पुत्रों में से एक थे। उनकी पढ़ाई लिखाई गांव के स्कूल में हुई थी और 21 नवंबर 1941 को यदुनाथ सिंह को मनचाहा काम मिला था, यानी वो सेना में भर्ती हो गए थे और उस समय वो केवल 26 वर्ष के थे और उन्होंने फौज में प्रवेश किया। उन्हें राजपूत रेजिमेंट में लिया गया था। वहीं उनको जुलाई 1947 में लांस नायक के रूप में तरक्की मिली और इस तरह 6 जनवरी 1948 को वो 10 धार में अपनी टुकड़ी की अगुवाई कर रहे थे और इस जोश में थे कि वे नौशेरा तक दुश्मन को नहीं पहुंचने देंगे। उस दिन नायक यदुनाथ सिंह मोर्चे पर केवल 9 लोगों की टुकड़ी साथ डटे हुए थे और दुश्मन ने धावा बोला। यदुनाथ अपनी टुकड़ी के लीडर थे। उन्होंने अपनी टुकड़ी की जमावट ऐसी की थी कि हमलावरों को हार कर पीछे हटना पड़ा।
हेलन एन रिचर्डसन खान वॉज बोर्न ऑन दिस डे 1938, नोन मोनोनिमसली एज हेलन। शी इज एन इंडियन एक्ट्रेस एंड डांसर। शी हैज अपीयर्ड इन ओवर 1000 फिल्म्स, मेकिंग अ प्रोलिफिक परफॉर्मर इन हिंदी सिनेमा। She is known for her supporting character roles and guest appearances in a career spanning 70 years. Helen has received 2 Filmfare Awards and is often cited as one of the most popular dancers of her time. And in 2009, Helen was awarded with the Padma Shri by the Government of India. She was the inspiration for 4 films and a book. Let's listen in to a hit song of hers. And Premnath Malhotra, better known as Premnath, was born on this day in 1926. He is an actor and director who was best known for his works in Hindi films. Nath made his debut with the film Ajit in 1948 and went on to appear in over 100 films throughout his career. He was nominated for 3 Filmfare Awards and later retired in 1985. Let's listen in to one of his dialogues from one of his movies.
Sharafat, Imandari, Deshbhakti, tumne inke asli roop nahi dekhe bete. आज से तालीम हासिल करके नए नए आए हो ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। इस दुनिया में ईमानदारी नाम है भूखे मरने का।
शराफत कहते हैं बिक जाने को और देशभक्ति सिर्फ एक नारा है जिसने जितना ऊंचा लगा।
और आज जन्मदिन है भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान नवीन मलिक का। उन्होंने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया और पुरुषों की फ्रीस्टाइल 74 किलोग्राम कुश्ती में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद शरीफ ताहिर को 9-0 के बड़े अंतर से हराया था। इससे पहले नवीन मलिक ने साल 2022 में ही 70 किलोग्राम भार वर्ग में एशियाई चैंपियनशिप उलान बतौर में कांस्य पदक जीता था। तो इसी के साथ श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।